फिर इसके बाद दूसरी बुनियादी वजह, द मेन सोर्स, द सेकेंड रीजन, हुब्बे माल। इंसान माल से मोहब्बत करता है, इसलिए अखलाकी तौर पर बद अखलाक हो जाता है। तानाजनी, ऐब जोई और माल की मोहब्बत को अल्लाह ताला ने सूरत अल हुमजा में यूं बयान किया, वैलुल्लि कुल्लि हुमजतिल लुमजा अल्लज़ी जमा मालं वअद्दा यक्सबु अन्न मालहु अखलदा कल्ला लयुंबज़न्न फिल खुतमा। तबाही है हर उस शख्स के लिए जो लोगों पर तान और गीबत का खूगर हो, यानी ताने देने का और गीबते करने का आदि हो, जिसने माल जमा किया और इसे गिन गिन कर रखा। वो ये समझता है कि इसका माल इसको हमेशा बाकी रखेगा, हरगिज़ नहीं। वो शख्स तो चिकना चूर कर देने वाली जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। ये सूरत इंसानी रजाइल, रजाइल क्या है, फजाइल की जमा यानी खराबियाँ, इनको बड़ी खूबसूरती से बयान करती है कि जब इसके दिल में माल की मोहब्बत होती है तो वो लोगों के ऐब ढूंढता फिरता है, ऐब मिल जाते हैं तो इनको लोगों में बयान करता है, फिर तानाजनी करता है, और इस माल की वजह से वो दूसरों को बेवकूफ़ समझता है कि हमारे पास तो पैसा है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा लेंगे, फलां इसलिए मर गया कि इसने ठीक जगह से इलाज ही नहीं करवाया, इसके पास पैसे ही नहीं थे, अगर इंग्लैंड के फलां हॉस्पिटल से इलाज करवाता तो ठीक हो जाता। गुमान ये है कि पैसा हमारी बका यानी सर्वाइवल का जरिया है, लेकिन कुरान कहता है कि ये बात गलत है, बल्कि माल के होते हुए भी इसको मौत आएगी, यानी अगर पैसा या माल सर्वाइवल होता तो फिर इसके होते हुए मौत तो ना आती ना, अमीर लोग तो कभी ना मरते। जबकि आप देखते हैं लोग माल कमाते हैं और जब खूब माल हो जाता है तो दुनिया से चले जाते हैं, तो जब मौत आएगी तो इसको ऐसी जहन्नुम में डाला जाएगा जो इसे चिकना चूर कर देगी। क्या पता चला कि माल की मोहब्बत इंसान के दिल में इंसानी जिम्मेदारियों को पूरा करने का ख्याल कम कर देती है, इंसान दूसरों की बुराई करता है, हक नहीं देता, और लिख लें जितना माल ज़्यादा होगा उतनी उसकी मोहब्बत ज़्यादा होगी। थोड़े माल से मोहब्बत भी थोड़ी रहती है, इंसान अपनी ज़रूरियात पूरी करके कुछ ना कुछ ऊपर दूसरों में लगा देगा, वो कहेगा कोई बात नहीं है ना इतना कर दो, लेकिन जितना माल ज़्यादा आता है, गिन गिन के जमा मालम वादादा, मैं इस जुमले को सुनती हूँ तो मैं सोचती हूँ वाकई सच है, पहले बंदा जमा करता है फिर गिनता है। पहले दौर में तो लोग नोटों की दफ्तरियां गिनते थे ना, गड्डियां और घड़ों में डालकर उसको दीवारों में छुपा देते थे, आज क्या गिनता है, अपनी स्टेटमेंट्स, बैंक की जाके कॉपियां, कार्ड्स, चेक बुक्स के देखूं जरा मेरे पास है कितना क्या है। यक्सबु अन्न मालहु अखलदा, क्या वो ये गुमान करता है उसका माल हमेशा रहेगा। क्या आपने दुनिया में लोगों के माल कम होते नहीं देखे, मैं तो कहती हूँ कम होते छोड़िए, मैंने तो पूरे पूरे जाते देखे। एक वक्त वो लोग जो बेताज बादशाह थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि नोट 1,000 का या 5 का, एक वक्त आता है कि घर में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं कि जिस दिल में माल की मोहब्बत होती है वो लोगों के ऐब ढूंढता है, सच है। वो जब माल आता है ना तो जुबान भी लंबी हो जाती है। आप देखिए जो गरीब हो गए ना, जिसकी जेब में कुछ नहीं, वो दुबका बैठा रहता है, ज्यादा बातें भी नहीं करता कि कई बातों की मोहब्बत में किसी को इनवाइट करके चाय पे ना लेके जाना पड़े, तो घर में तो चाय के साथ कुछ है ही नहीं है। जिसकी जेब में पैसे होते हैं ना वो फिर फुदकता है, फिर वो लंबी लंबी बातें करता है, बड़े बड़े उसके सौदे हैं, करोड़ों की बातें हैं, लाखों की बातें हैं, फिर कहेगा तुम तो बुद्धू हो, देखो मैं कितना माल कमाता हूँ, तुम्हें अकल ही नहीं है, तुम्हें होश ही नहीं है। फिर ऐप मिल जाए तो लोगों में बयान करता है, फला बेवकूफ, फिर ताने, फिर बेवकूफ समझना, यानी ऐसे लगता है कि अक्सर लोग दूसरों के ऊपर यही बातें कर रहे होते हैं। इज इट ट्रू? अक्सर लोगों को आप देखिए कि जब पार्टियों में, दावतों में, एक दूसरे से मुलाकातों में जब मिलते हैं ना, डिस्कस नहीं कुछ कर रहे होते हैं, फलां को अकल नहीं, उसको कारोबार करने ही नहीं आता, वो तो बुद्धू है, वो तो बेवकूफ है, और उसको तो घर चलाना ही नहीं आता, यानी ऐसे लगता है पोस्टमार्टम करें आप इंसानों का। और जूं ही हुब्बे माल आएगी ना तो बुखल आ जाएगा, जैसे पीछे हमने पढ़ा ना, حب نفس کے ساتھ تکبر، تکبر کے ساتھ حسد، تو مال کی محبت کے ساتھ بخل آتا ہے. سورت معون مال کی محبت میں مبتلا لوگوں کی نفسیات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہے. آرائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساخون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون. آپ دیکھیں اللہ نے لفظ کیسے استعمال کیے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ وزن پہ وزن گر رہا ہے. بدین، یتیم، مسکین، مسلین، پھر ساخون، یراءون، ماعون، ایسے لگتا ہے کہ پوری ایک چین چل رہی ہے. ترجمہ کیا؟ کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جو روزے آخرت کو جھٹلاتا ہے، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا؟ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. یہ کون سے نمازی ہیں؟ پڑھتے ہیں تو یاد ہی نہیں ہوتا پڑھا کیا، پڑھتے ہیں تو ٹال کے پڑھتے ہیں، لیٹ پڑھتے ہیں، نماز میں دل دھیان کہیں اور ہوتا ہے. جو دکھاوا کرتے ہیں شو آف کے لیے، یعنی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دکھاوا بھی بڑا زندگی میں، اور نمازیں پڑھتے بھی دکھاوے کے لیے، اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت میں گرفتار شخص کی قبیحاتیں بیان کی، یعنی وہ اس قدر مال کی محبت میں ڈوب جاتا ہے کہ قیامت کے دن کو جھٹلانے لگتا ہے. وہ اس بات سے ہی انکاری ہو جاتا ہے کہ اسے روز آخرت اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. اس گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے سے گریز کرتا ہے، اور مسکین کو بخیل ہونے کی وجہ سے نہ تو خود کھانا کھلاتا ہے اور نہ کسی اور کو اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے. اور جب انسان مال کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اپنی نمازوں سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اور اگر نماز پڑھتا ہے تو دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، یعنی اللہ کے لیے اس میں اخلاص باقی نہیں رہتا، اس کی نمازوں میں خشوع خضوع نہیں رہتا، وہ نماز اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے جیسے انسانوں کے لیے پڑھنے لگتا ہے. اللہ کے لیے نماز پڑھنے کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ انسان کے اندر وفا، ایثار و محبت اور ممتا پیدا کرتی، لیکن دکھاوے کی وجہ سے یہ صفات زائل ہو جاتی ہیں، اور انسان اس قدر بخیل ہو جاتا ہے کہ اگر اس سے کوئی عام ضرورت کی چیزیں ادھار مانگتا ہے تو وہ انہیں بھی دینے سے کتراتا ہے. اس میں حرص، طمع اور لالچ کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی مال کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ جائز ناجائز طریقوں سے مال اکٹھا کرنے میں لگا رہتا ہے، چوری کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، ملاوٹ چور بزاری کرتا ہے، کالا دھندا بلیک منی، خیانت اور ناپ تول میں کمی کرتا ہے. غرض یہ کہ بنیادی خرابی حب مال تھی، لیکن اس کے ذیل میں ڈھیروں اخلاقی رذائل آ گئے. بات سچ ہے؟ آپ دیکھیے کہ ان چیزوں کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو اس سوسائٹی کے اندر جو خرابیاں اس کی وجہ دکھے گی. آج بھی آپ اپنے آپ کو دیکھیں، مال کی محبت کے لیے پہلے تو خود سے کچھ سوال پوچھتے ہیں. کیا میرے دل میں مال کی محبت ہے؟ کیا میں ایک ایک پیسہ سینت سینت کے رکھتی ہوں؟ اچھا تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں محبت کرتے، کیا لکھ لوٹ ہیں، ایک کی جگہ دس خرچ کر آتے ہیں. ذرا سوچئے، اب تھوڑا سا ہمیں اس کو بھی تو سمجھتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں میرے دل میں تو مال کی ذرا محبت نہیں، کیا میں 1000 کرون کی ایک شرٹ لے آتی ہوں؟ آپ دیکھیے، مال کی محبت نہیں ہے. کس کی محبت ہے؟ نفس کی محبت ہے. آپ حب نفس کا شکار ہیں کہ آپ اپنے اس مٹی کے بت کے اوپر 1000 کرون کی قمیض بھی لا کے پہن سکتے ہیں. آپ کو کیسے پتا چلے کہ مجھے مال سے محبت ہے کہ نہیں؟ اپنے اس نفس سے ہٹ کر کتنا لگاتے ہیں، دوسروں کے اوپر کتنا لگاتے ہیں، اللہ کے راستے میں کیسے کرتے ہیں؟ بات سمجھے آپ؟ دیکھیے، آپ اور میں اگر عام ایک اوسط، ایک ایوریج گھرانہ اپنے بچوں پہ دیکھے تو ایک بچے کے پیدا ہونے سے جوان ہونے تک کتنا لگا چکے ہوتے ہیں ہم لوگ؟ سوچیے، آپ اپنے بچے کی ایجوکیشن پہ، اس کے کھانے پہ، اس کے کپڑوں پہ، بعد میں کمپیوٹرز میں ساری زندگی دیتے ہیں. چپتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بچے سے محبت ہے. اور انسان کہتا ہے ہم کماتے کس لیے ہیں؟ लेकिन आप उस माल को वहां जिधर आपका कोई फायदा नहीं है कितने दिल से लगाते हैं। किसी को गिफ्ट भी देना हो, कहते हैं उसने 100 का दिया था तो बस मैं 105 का दे दूं, बहुत है, वो तो हमें ऐसा देते हैं, अब हम उनको इससे ज़्यादा दें। फिर यहाँ वही बात जो हमने शुरू में पढ़ी थी, इसी सीरीज में मुझे याद आ रहा है, थोड़ा जिक्र हुआ था, माल की बांट, तीन हिस्से। एक हिस्सा अपनी ज़ात पे लगाएं, ज़रूरियात, खाना पीना। बस आप में से बहुत सारी सिस्टर जॉब नहीं करती, घर में खाना पीना खर्च मर्दी करते हैं, आप भी अपना गोल बनाएं। कुछ घरों में पैसे पूरे के पूरे दे दिए जाते हैं, बाद में उसको लेना होता है, मर्द कहते हैं अब तुम जानो तुम्हारा काम है ना, ऐसे कुछ घर, खर्च पानी आपने करना। पहले तो हाथों में पैसा आता था, अब तो कार्ड आ जाता है, उसी में सब कुछ चल जाता है। लेकिन चलिए आप अपना हिसाब रखें, आपको खर्च के 10,000 क्रोन मिले, आपकी बेहतरीन बांट क्या होनी चाहिए कि 1/3 3,333 क्रोन आप ज़रूरियात पे लगाएं, जिसमें जो भी आपके बेसिक्स हैं, जो आपको अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियां दी हैं, 1/3 फी सबीलिल्लाह। अब वो कैसे आप पकड़ के इकट्ठा दे दें, नहीं, उसमें आप दूसरों को खिलाना, गरीबों को देना, अल्लाह के रास्तों में देना, यानी 1/3 आपका अपनी ज़ात से ऊपर लगना चाहिए, मेहमानों को खिलाना, जो भी उसमें ज़रूरियात है, जो 1/3 है ना वो आपको बचाना चाहिए, सेविंग्स। वाई? कल किसी मौके पे परेशानी आ गई तो दूसरों से उधार ना मांगना पड़े। अमूमन क्या होता है, आप यहाँ से निकलें शाम को, अपने बच्चों को बाहर ले जाएं, आइसक्रीम खाने जाएं, कितने पैसे लगते हैं, कोई आप में से बताए मुझे? 30 क्रोन की है। कितने बच्चे हैं आपके घर से? 4 है ना, तो 30 × 120 हो गए, तो आप भी लेती होंगी अपनी 150 क्रोन। 120 क्रोन में हमारा हर बच्चा एक आइसक्रीम लेता है ना, ऐसे ही है ना। पिज़्ज़ा खिलाना हो तो कितने पैसे लगते हैं? 200 से ज़्यादा लग जाता है। और क्या खाते हैं बच्चे शौक से? मैकडोनल्ड खाते हैं, बाहर जाते हैं खाने, बाहर जाके खाना खिलाएं तो कितने पैसे लगते हैं एक फैमिली के? 500 करोड़ लग जाता है ना। हाँ जी, और ये बताएं कि जब लोग ये शादियों पे दूसरों को बुलाते हैं तो पर हेड कितना खर्चा आता है इधर? जैसे शादी का आपने खर्चा किया, बेटी की शादी आप दावत दे रहे हैं तो 100 लोगों को बुला लें, मिसाल है, तो एक बंदे के कितने पैसे होते हैं ऑलमोस्ट? बड़े भोले हैं आप,
300 से 5 तक अगर आप, मतलब
नहीं, हॉल के साथ जो खाने खिलाते हैं। मुझे इस साल पाकिस्तान में जाके इस बात की खबर मिली कि जो लोग शादियों में दूसरों को इनवाइट करते हैं, हालांकि लाहौर में इस वक्त 1 डिश की पाबंदी है, 10 बजे के बाद हॉल की लाइटें बंद हो जाती हैं, और खाने में बिलीव मी प्लेन कोई एक चावल, कोई एक सालन और रोटी, यानी उसमें कोई तीसरी चीज़ नहीं होती। जिन्होंने मैंने देखा ड्राई आइटम रखना तो चावलों के ऊपर डाल देते हैं, अलग रख नहीं सकते। अच्छी बात है, अच्छा कानून है, कोई बुरी बात नहीं है। तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा आजकल शादी में एक बंदे को जब आप लोग बुलाते हैं तो कितना खर्चा है? तो कहते हैं वैसे तो हद कोई नहीं है, लेकिन बहुत कम कार करा के जो कराओ तकरीबन 2,000 रुपये एक बंदे का खर्च आता है। मैं कहा 2,000 रुपये ये चावल रोटी सालन? कहते नहीं, कुर्सी मेज हॉल का किराया बिजली का बिल 2,000 रुपये एक बंदे का आपने बुलाया, तो आपने कितने लोगों का अरेंज किया? कहते हैं 400 लोगों का। 400 को आप 2,000 से ज़रब दें, 8 लाख बन गया। 8 लाख रुपये आप सिर्फ, और आजकल दावत रह कितनी गई है, घंटा से डेट, 10 बजे दावत है, लोग आते ही 8 बजे के बाद आते हैं, बुलाया 7 बजे होता है। अल्लाह अकबर, आपने इस हॉल में, और आप 400 को बुलाया था, 150 तो आया ही नहीं, अब वो खाना बच गया। कितना बड़ा दिल है, 8 लाख रुपये आपने सिर्फ एक दावत, और ना वो वलीमा है ना कोई वो है, वो बस एक दावत है। और लोग क्या बताते हैं कि ये तो वो दावत है जो लीगल है। अब जिनके पास पैसे हैं वो क्या करते हैं, ये भी सुन ले, क्योंकि वहाँ तो एक ही खाना है ना, वहाँ आप अपने शौक नहीं पूरे करते, फिर वो शादी से एक दिन पहले घर में, चाहे वो उसको मेहंदी कहें, चाहे वो उसको कुछ भी कहें, उसको एक फूड के खाना के, वो अपने क्लोज सर्कल 100-200 को बुलाकर फिर एक खाना 8-10 डिशों वाला खिलाते हैं, और 8-10 डिशेज जब बनती हैं तो 4-5 हज़ार एक बंदे का खर्चा आता है। आप मुझे बताइए क्या माल से मोहब्बत है हमें कि नहीं, ये हुब्बे नफ्स है। और लोग कहते हैं क्या खाएं तो क्या छोड़ें, और गिल्ट, لیکن جب ہمیں اللہ کا راستہ آتا ہے سامنے، یا ہمیں کسی غریب کی ضرورت پوری ہو، انہی گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں اور وہاں کے ڈرائیور 5,000-6,000 مہینے کی تنہائی. 5,000 کا نوٹ آپ کو ایسے اب لگتا ہے پاکستان جا کے، یقین کریں ایسے لگتا ہے آپ کو 5,000 کا نوٹ کہ جیسے شاید کبھی، بہت بھی اس وقت میں کہہ دوں تو 500 روپے کا جو آپ سوچیں گے نا، وہ 5,000 کا نوٹ ہے. ایک مہمان کھانے کے لیے آتا ہے، کھانا چھوڑے چائے پہ، سیدھی سی بات ہے، کہتے ہیں 1,000 کا نوٹ دو، صرف 2 یا 3 چیزیں ڈرائیور لے کے آتا ہے، بسکٹ لے آؤ، کوئی بیکری سے 2 چیزیں منگا لیں، 1,000 روپیہ چلا جاتا ہے، دودھ بھی گھر کا، پتی بھی گھر کی، اور چائے پھر چائے ہی ہوتی ہے. کھانا دعوت عام گھر میں، میں نے خود دیکھا ہے، ایک عام دعوت، 2-3 اپنے گھروں کی دعوت کر لیں تو 25,000 سے 30,000 روپے گھر میں دعوت کرنے کا خرچہ آتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک ملک، غریب ملک جس کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی، جہاں بھوکے بیٹھے ہیں لوگ، کیا ان لوگوں کو یہ سب کچھ دیکھ کر پھر غصہ نہیں آئے گا؟ اور آپ یہ سوچیں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ پھر بندہ دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے، اب جو لوگ ایسی شادیوں سے کھا کے کھانے آتے ہیں، آپ کا خیال ہے گھر آ کے وہ قصیدے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں حرام کا مال تھا، ان کا آتا بھی ادھر سے نا تو جاتا بھی ادھر سے. اور جو نوکر ہیں وہ کیا کرتے ہوں گے، کہیں گے دیکھو یہ کل مجھے باجی نے 500 روپے پہ اتنا ڈانٹا ہے، پتہ نہیں کدھر گئے کیا ہوا، اور آج دیکھیں 5,000 کا اپنے ہی میرے ہاتھ میں بل بھیجا کہ جاؤ یہ درزن کو دے یا درزی کو دے. اور آپ بتائیے یہ جو نوکر ٹائپ کے لوگ ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، پھر وہ کیا سوچتے ہیں؟ آج اتنا بڑا یہ ٹاپک آ گیا ہے، واللہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ میں پریشان ہوں، کیونکہ ابھی اس دفعہ کافی زیادہ مجھے گھومنے کا موقع ملا، ٹرپس ویئر موسٹلی جو درس تھے نا لوگوں نے جو شادی حالوں میں کیے، یہ فرسٹ ایک ٹائم ایکسپیرینس تھا پاکستان میں، میں کبھی شادی حالوں میں گئی نہیں، اب کبھی موقع ہی نہیں ملا تو، لیکن یہ ہے کہ وہاں جا کے مجھے اندازہ ہوا کہ ان ہالز میں لوگ شادی کرتے ہیں تو اس کا خرچہ بھی ہوتا ہوگا، لیکن کچھ نے چونکہ جگہ کی قلت ہے، اتنے بڑے گھر تو نہیں ہوتے نا، تو پھر ہالز کیے تو اور اس کے پیسے بھی دیے. تو میں سوچ رہی تھی کہ انہوں نے دین کے لیے اتنا پیسہ لگا لیا ہے تو لوگ تو شادیوں میں اس سے 4 گنا زیادہ لگاتے ہوں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر لوگ باتیں بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو، پھر اس سے خرابی بھی پیدا ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد، جب ایک انسان اس طرح کے حالات سے گزرتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اچھا جی یہ پھر میں کماتا کس لے ہوں، تو سوچ فرق ہے. دیکھیے جو میں سمجھی ہوں، مجھے تو اتنی سمجھ ہے کوئی نہیں، لیکن جو مجھے اللہ کی سنت سمجھ آئی ہے، آپ کو اللہ 1,000 دے یا اللہ تعالیٰ آپ کو 2,00,000 دے، آپ کا اس میں وہ ہے جو آپ کی ضرورت ہے. ما اکلا، کھا لیا فنا ہو گیا، پہن لیا پرانا ہو گیا، آگے اللہ کے کام میں اپنا آپ دے دیا. جب ہم اللہ کے راستے میں دینے کا سوچتے ہیں تو اس وقت کیا سوچتے ہیں؟ چندہ، ریزگاری، چھوٹی چھوٹے نوٹ، پھٹے پرانی چیزیں نکال کے. اور آپ دیکھیے اکثر ڈونیشن باکس میں سے کوائنز نکلتے ہیں. ایک انسان اگر دیکھے کہ جس نے اس کو دیا، آپ کو کوئی فون لے کر دے یا آپ کو گاڑی آپ کے میاں لے کر دے تو وہ کہیں ذرا چابی دینا، تو آپ خوشی سے دیں گے کہ ناراض ہو کے دیں گے؟ کہیں گے آپ نے دی تھی، آپ لیجیے یوز کریں، فون آپ نے لے کے دیا تھا آپ یوز کریں. ایسے ہی ہوتا ہے نا بندوں کے ساتھ، ہمیں پھر بھی بات سمجھ آتی ہے، اللہ کے ساتھ سمجھ کتنی آتی ہے. ایک روایت پڑھی تھی کہیں کہ حضرت موسیٰ نے ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کیا کھاتے ہیں؟ کہا موسیٰ آپ مجھ سے یہ سوال نہ پوچھیں. کہا کیوں؟ آپ سب کو کھلاتے ہیں، آپ پتہ نہیں خود کیا کھاتے ہوں گے. آپ پہنتے کیا ہیں؟ کہا مت پوچھیں. نہیں اللہ تعالیٰ بتائیں. کہا اچھا میرا کھانا پانی کپڑے دیکھنے تو فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں میرا کھانا بھی ہے میرے کپڑے بھی ہیں. اب موسیٰ گئے ہیں اور گھر سے نکلے اور سوچ کے رہے ہیں کہ کیا شاہی کھانے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا ہے جو اللہ نے اپنے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے. اور جب وہاں گئے تو کچھ بھی نہیں دکھا، ڈھونڈتے رہے، جو سوچ رہے تھے وہ نہیں ملا، درخت کے نیچے پرانا کھانا پڑا ہوا ہے اور درخت پہ چیتھڑے لٹک رہے. کہا اللہ تعالیٰ کدھر ہے آپ کا کھانا، آپ کے کپڑے مجھے تو نہیں دکھے. کہا یہ ہے میرا کھانا اور یہ میرے کپڑے. اللہ تعالیٰ آپ یہ کھاتے ہیں؟ کہا میں تو وہ کھاتا ہوں جو میرے نام پہ بندہ دوسروں کو کھلاتا ہے، اور میں وہ پہنتا ہوں جو میرے راستے میں دوسروں کو دیتے ہو. عموماً دیکھیے چیتھڑی دیتے ہیں نا، اور یہ تو ابھی کھانے کا روگ ہم روگ رہے ہیں. کبھی کپڑوں کی بات کریں تو آپ یہ سنیں جو پاکستان کی سیریز تھی، کیونکہ وہاں فرسٹ ہینڈ چیزیں دیکھتی تھی سنتی تھی، اور جہاں جائیں وہیں کے مسائل کھولنے چاہیے، یہاں ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ ہی نہ آئے. میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں سوچا کہ کوئی ایک عام عورت اتنا مہنگا کپڑا خرید کے پہن سکتی ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو پہننے اور بناتے ہوئے دیکھا ہے. चलो फिर एक जोड़ा होगा बहुत है, आपने 5,000 से शुरू की है, अगर यानी एक गज टुकड़ा कपड़े का 5,000 रुपये का मकसद में मिल रहा है, सिर्फ एक गज टुकड़ा, मैं पूरे यकीन के साथ आपको ये बात कह सकती हूँ। और ब्रांड्स के नामों ने, और वो छोटी छोटी कमीज़ें हैं, और ना दुपट्टा रह गया ना शलवार रह गई, तंग पजामे, दुपट्टे की ज़रूरत कोई नहीं, एक छोटी सी कुर्ती आप 4-5 हज़ार रुपये की लॉन की लेके आते हैं। ज़रा सोचिए कि एक मुल्क में ऐसी गुंजाइश है, और 10-10, 15-15 जोड़े एक एक औरत एक शादी पे बनाती है, और बाद में रोती क्या है, पूरे पहने ही नहीं गए, बनाए जो इतने थे तो पहने कहाँ जाएंगे। मैं हैरान होती हूँ कि अपनी जात पे लगाते हुए कितना दिल खुलता है। लॉन का सूट 5,000 रुपये से शुरू होता है, कोई होंगे इससे कम मुझे नहीं दिखे, लेकिन मैंने इंटरेस्ट लेके भी पूछा है, जब भी कभी किसी को मैंने देखा है या मौके में, कहते हैं सीधी सी बात है, 5,000 का नोट ले जाए और अनसिला जोड़ा कोई आपको दे दे, आपको गम पड़ जाता है सिलाने में, ऊपर सिर्फ सिलवाने में, अच्छे से अच्छा सूट या सस्ता है सिलवाना तो पड़ेगा ना, कम अज़ कम 2-2.5 हज़ार रुपये आपके सिर्फ सिलाइयों में, और कुछ शमीज़ ले लें और शलवार लें तो 4-5 हज़ार में पड़ जाए, ठीक है आप करें, लेकिन अपनी ज़िंदगी का इसको मकसद तो नहीं बना सकते ना। और फिर आप देखिए कि ये सब कुछ पहन ओढ़ के काम क्या हम करते हैं, फिर जिस्म नहीं पूरे छुपते, फिर हमारा जिस्म बुत की तरह बना हुआ है, और हमारी बेटियां औरतें वो कपड़े पहन के बाहर आती हैं। मैं कह सकती हूँ कि आज से 10 साल पीछे भी ये कपड़े घर के अंदर कोई माँ बहू बेटी पहन है तो ससुर या बाप आंखें बंद कर ले कि शायद ये गलती से कमरे से निकल आई है, मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ। ये कपड़े पहनकर इस वक्त हमारी औरतें बाहर सड़कों पे फिरी, हमारी बेटियां, हमारी लड़कियां वो कपड़े पहन के बाहर आए कि जिसको पहनकर जिस्म का एक एक अंग देख लो, कितनी पतली है और कहाँ से ये मोटी और कहाँ से पतली है, तो आप बताइए कि वो कपड़े का कोई हक अदा हुआ? जितना कपड़ा थोड़ा लग रहा है उतना महंगा है। मैंने कहा ये क्या कहते हैं कि बाजू नहीं है, तस्वीरें लेके आते हैं कपड़ों के साथ, ये स्लीवलेस कपड़े पहनने, नहीं नहीं आपने बाजू लगाने हैं तो रख लें, क्यों लगवा लें, आपको एक्स्ट्रा पैसों के बाजू देते हैं, वैसे जो कपड़े बने हुए हैं उसमें बाजू कोई नहीं है काम वाले। आप बताइए जरा मुझे, आप क्या सोचते हैं? आप बड़े खुश हैं इस बात पे कि आप एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं और आपके लिए काफी है, जो शैतान नाच रहा है इस वक्त, मैं सोचती हूँ कि जो जिंदगी के मकसद से हटा के शैतान ने हमें बेवकूफ बनाया, ये तो कभी बनाया ही नहीं होगा, कि लोग हैरान होते हैं कि आप कैसे शादी खाएंगे। मैं गई हूँ, मेरे सगे भांजे की शादी थी इस साल, यानी इस सुबह मेरा ख्याल था कि ये पूरा मेरा पर्सनल ट्रिप है, उतना ही पर्सनल नहीं रहा, मैं उसकी शादी वाले दिन भी वहां नहीं थी, दूसरे शहर में थी। एक जोड़ा अगर आप कहें कि मैंने खुद जाके खरीद के बनाया हो, मैं अगर आपको अपनी कहानियां सुनाऊं तो आप मुझे लान तान करेंगे कि आप जैसी भी कोई कंजूस खाला होगी। मैंने नहीं कोई नया कपड़ा अपने हाथ से खरीदा, और किसी का पहनना हुआ मैंने ठीक कराया, पहन भी नहीं सकी, एक दिन तो गई कोई नहीं, वहां थी नहीं, दूसरे दिन पहनना होगा तो वो भी वो नहीं पहना, कुछ और पहना, कुछ भी नहीं हुआ। अब वो लाड़ पूरे हुए, चाव पूरे हुए, मुझे ये पता है कि अगर किसी को मेरे जाने से फायदा हो रहा है तो मैं उसका फायदा कर दूं। मैं नहीं कहती कि मैं बहुत हूं, लेकिन मेरे अंदर हौसला नहीं, और मैंने सिर्फ चंद सूट सिलवाए हैं खुद अपने पैसों से जो मुझे गिफ्ट्स में मिले हुए थे, खरीदा कोई नहीं है। तो जब मैं दर्जन को बिल दे रही थी, मैं कहती इतना बिल, बाजी देख लो शमीज इतने की है, ये इतने की, और सीधे जोड़े, कोई उसमें ये नहीं कामों वाले कपड़े, सीधे जोड़े। फिर मैं कह रही चलो ये गरीब औरत को जा रहे हैं, मुझे देने में तकलीफ नहीं, लेकिन मैं ये सोच रही थी ये मेरे जैसी का ये बिल इतना बना है जो मैंने आके 4 दिन में किए, तो ये जो 6-6 महीने से तैयारियां कर रहे हैं, आप यकीन करें घर की शादी, वो करीब की यानी बहन बेटी माँ, इनके कपड़ों पर इस वक्त 2-2, 3-3 लाख रुपया लग रहा है सिर्फ जोड़ों पर, जेवर तो आप पहन ही नहीं सकते अब गोल्ड का, ये हालात है। और हौसले इतने खुले हुए, आम बात है, मर्दों की जान निकली हुई है इस वक्त, जहां आप 4 मर्दों में बैठ के, मैंने भी अपने रिश्तेदार करीबी उनकी बातें सुनी है, कहते हैं जान हलक में फंसी हुई है, पर माँ है उसकी तसल्ली नहीं, वो कहती है बहन है आखिरी बहन है इसकी शादी करो, एक एक शादी एक एक मंगनी पे 10-10 लाख रुपया लगता है सिर्फ 4-6 जोड़े इधर उधर से दे लेके खाना खिलाने पे। मर्द इस वक्त पिसे हुए हैं हमारे मुल्कों के, औरतें बादशाह बनी हुई हैं, सिर्फ एक साल के लिए कोई हुक्मरान आ जाए और औरतों को बाजार में दाखिला बंद कर दे, आपका मुल्क सीधा हो जाए, नाचती हुई औरतें तस्वीरें चारों तरफ तो उन्होंने वैसी लगाई हुई हैं, यानी इतनी खराबियां हुब्बे माल की, इतनी खराबियां कि आप कैसे नमाजें पढ़ें, आपकी नमाजों में वो शऊर कहाँ से आएगा, आपकी नमाजों में वो खुशू कहाँ से आएगा। और जिस मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस, किसी को परवाह नहीं। सर से ऊपर जितनी बड़ी आपकी बिल्डिंग है, इससे भी चार मेरे हाले दो फ्लोर ऊपर डाल लें, ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने खुद तस्वीरें एक एक मॉडल की देखी हैं जो लॉन की तस्वीरें बना रही हैं। वल्ला ही वो औरत नहीं, वो जिन लग रही होती हैं इतनी बड़ी ऊपर। और मोड़ गाड़ी मोड़ते हैं ड्राइवर, और सामने एक इतनी बड़ी औरत है। ड्राइवर कहते हैं बाजी हादसा हो जाएगा, हमारी तवज्जो चली जाती है, और हमारी जाती है औरतों की, तो ये गरीबों की क्यों नहीं जाती होगी जिनकी बीवियां मासियां बन के घरों में काम करती हैं। जी आप सभी
जी सर जी, इसी हफ्ते मैंने भी एक नेट पे खबर पढ़ी है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो भी ऐसे ही वो आदमी है जो उस तरफ इशारा करके ना बोर्ड की तरफ तो कह रहा था इसकी वजह से हुआ है।
जी
ये बिल्कुल इसी हफ्ते
ये अब ड्राइवरों का आम इशू है। वह
वो
गर्मियां
हाँ
आती हैं, जो बेगमात के ड्रेस हैं वो पहन के बाहर उनको इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हैं, यकीन करें उनके अंडर गारमेंट्स तक दिख रहे होते हैं। जब माल ज्यादा आता है तो गर्मी भी ज्यादा लगती है, फिर कपड़े पहन कर भी बंदे के जिस्म नहीं होते। और ये जो पजामे, मैं कहती हूँ इसके लिए आप कंपेन चलाएं, अल्लाह के लिए अपनी बेटियां बहुएं आपके अपने भी अगर हैं, चाहे आप घर में पहने, कैंचियां लेके सबके सामने काटें, इनको आप सर्दियों में भी ना पहने, इनको आप नीचे भी ना पहने, इनको फेंक दें, क्योंकि ये आपको वो हदीस पे ला रहे हैं कि कासियातुन नारियातुन। आपने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा कि औरतें कपड़े पहन कर भी नंगी होंगी, मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा कोई और होगा। वो स्टॉकिंग्स जो आज से मेरे हाले 10-15 साल पहले यंग छोटी बच्चियां, मसाल के अंदर की बच्चियों को लोग लेगिंग के नाम पे पहनाते थे, और मुझे याद है कि हमारे वालिद किसी बच्ची को देकर उसकी माँ को, आज से 20 साल पहले की बात होगी, ये ना पहनाया करो, इतनी बच्ची कुछ महीने की, क्योंकि टांगे दिखती हैं। उस वक्त एक 6 माह की बच्ची के लिए बापों के दिलों में वो गैरत थी जो आज 16 साल 18 साल की बच्चियों के लिए नहीं है। पीछे से हाथ किसने खड़ा किया? जी ना अनिला।
कल मैं जब घर गई थी तो मेरे मियाँ न्यूज़ के शौकीन हैं, वो देखते हैं, तो वो मुझे बता रहे थे कि पाकिस्तान में कि आजकल बहुत ज़्यादा ना ये कोई पनामा लीक्स वगैरह हुई हैं, और वो करप्शन का है, तो वो इंडोनेशिया के मुल्क ने सर्वे किया है कि क्यों करप्शन ज़्यादा होती है ना, तो उन्होंने बताया कि औरतों की वजह से, कि वो अपने मर्दों को इतना प्रेशराइज करती हैं कि भाई ये चीज़ देनी है, तो आस्ता आस्ता करते तो वो फिर
ये सच है, एक भेड़ चाल है जिसके अंदर हम आए हैं, और ये हुब्बे मालदे में कहीं का नहीं छोड़ा, यकीन करें नहीं छोड़ा। जी आप बताइए।
यहाँ मैं तो समझती हूँ मर्दों का ही कसूर है जो औरतों की मानते हैं, अगर मर्द सही मर्द हो तो औरतों की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो अपने उनको अपनी मनवाएं।
जी देखिए कि हर चीज में पीछे से वो ईंट ही बिगड़ी हुई है ना, हमने लड़कियां कौन सी चूज की है जो मर्द बन के आती हैं, वो बीवी बन के तो नहीं आती घर में, वो दबके तो नहीं आती, वो कितने बराबर का कमाते हैं। जी आप इधर से।
खुद अपनी बेटियों को बतौर नमूना पेश करती हैं, कहती है जाने दो बाबा, इसके बाबा जाने दो, बस इसको ये करने दो, फिर खुद ही कहती है कि ऐसी बेटी हम ना ही पैदा करते तो वो बेहतर था। जब स्टेज
यानी आप वो कहानियां तो सुने जो इस वक्त आम हुई है मुसलमान बेटियों की, तो आप कानों को हाथ लगाएं,
पहले खुद उनको फैशन करती है, बतौर नमूना पेश करती है।
माएं कहती है हमें अब किसने देखना है, यकीन करें इनको पहनाओ छिनाओ शादियों में, इनके कपड़े बनाओ ताकि इनको देखें लोग, इनके रिश्ते हैं।
नॉर्वे में आके एक बात नोट किया कि इधर की 7th और 8th क्लास की बच्ची पूरी गारदारी संभाल लिया है, लेकिन उधर एमए के स्टूडेंट लोग उसको शरी गुसल का तरीका नहीं पता, एमए का जाती है लेकिन शरी गुसल का नहीं पता, और इतने रोंगटे खड़े होते हैं कि शरी
पूरी तरतीब भी बदली हुई है हमारी,
फैशन देखे उनका तो काम तो,
क्योंकि काम वालियां हैं ना। जी इधर से और जी आप।
मैं ये कह रही हूँ कि असल वजह ये है कि हमें ईमान ही नहीं रहा,
जी असल बात यही है ना कि वो शऊर नहीं है, मुझे तो सीधी सी बात शऊर की कमी लगती है ही कोई नहीं, ऐसे लगता है जो सब कर रहे हैं वो करना है, गलत करना है ठीक करना है, अपना दिमाग नहीं हम इस्तेमाल कर पाते, हम अपने आप को सोचते हैं कि ये पता नहीं कैसी बात है और वो है और ये है। और ये माल का फितना बहुत बड़ा फितना है, याद रखिएगा कि जब किसी कौम के अंदर माल का फितना आता है ना और औरत का फितना आता है तो वो उसके जवाल की अलामत होती है। बनी इसराइल में जो फितना आया था वो भी औरतों का ही फितना आया था, तो इसमें कम से कम हम अपना किरदार तो अदा करें। मैं कहती हूँ कि आप अपने बच्चों से मजबूर हो जाते हैं, मैंने तो देखा लोग एक एक साल दो दो साल के बच्चे से मजबूर हो जाते हैं, मेरा ये बच्चा नहीं ये चाहता मैं ये नहीं कर सकती, आपने तो खुद ही उसको सिखाया है कि आज सारी जिंदगी आप तुम्हें पूछ के मैं चलूंगी। आप खुद अपने अंदर वो चीज़ डालें जिससे आपको महसूस हो कि आपके बच्चे, आपकी ज़ात, आपका घर, आपकी ये चीज़ें हकीकत में आपको महसूस हो कि ये अल्लाह की अमानते हैं। जी आप।
सर यहाँ तो लोग डरते हैं कि हम बच्चों को कहेंगे तो गवर्नमेंट ले जाएगी, मैंने देखा पाकिस्तान में भी ये डर बहुत ज्यादा है बच्चों से, लोग करते हैं
मैं कहती हूँ बच्चों के गुलाम हैं बच्चों के। अब वो बिल्कुल रिवायात टूट गई हैं जो पहले कभी होती थी। जितना हमारे माँ बाप ने हमें दबा के रखा हुआ है, वल्लाह ही आज अगर लोग दबाएं तो लोग उनको पता नहीं कितना बुरा फतवा दे दें। आज इतना खौफ है औलादों का, और आप महसूस करके देखें कि उसकी वजह झूठा लाइफस्टाइल है। हम जो चीज़ें उनको लेके देते हैं, जो चलाते हैं दिखाते हैं, और मैंने बहुत कम खुश लोग देखे। करोड़पतियों के बीच में रहकर आती हूँ मैं, जब भी जाती हूँ करोड़पति लोग हैं, खुश लोग कम हैं। दौलत उनकी बांधी है, बाहर तक दौलत गिर रही है उनकी, लेकिन खुश कम है। मसले, परेशानियां, स्ट्रेस, टेंशन। अगर कोई करोड़ों में खेल रहा है तो वो उतनी बड़ी गर्दाप में आया हुआ है, उसको वो परेशानी है। और ख़ास तौर पे ये जो सदी चली है, ये आखिरी 10 साल, तो मुझे लगता है हम अपने औलादों के हाथों में यरगमाल हो गए। और ये यहाँ के असरात वहाँ भी जा रहे हैं ना, कि आप अपने बच्चों से डरें। और आप याद रखें, ये बात लिख लें, एक वक्त आएगा आपके पाकिस्तान में भी वारने बांध जाएगी, वहाँ भी फिर औलादें बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप को पकड़वाएंगे। हालात तो वो बन गए हैं, डर तो इतना ज़्यादा है कि आप कह रही हैं ये मानती नहीं, थप्पड़ मारो एक इसके मुँह पर, क्या ज़रूरत है इसको लेके देने की, नहीं आपकी मानती है, पर्दा नहीं करती, आप इसको पुराने कपड़े दो, आपको क्या हक पहुँचते आप इसको दें। नहीं ना, फिर जवान बच्चे, जवान हो गए आप, बूढ़े तो नहीं हुए, आप भी जवान हैं अभी। पीछे से आप शीदा भाजी, जी हर जगह ऐसे ही है, खाना होता है ज्यादा रिस्क मिलता है, बीमारियां लग जाती हैं, और अगर कारोबार बढ़े हैं तो स्ट्रेस टेंशन है। भाई आप, मैं तो जिसके साथ बैठी मैंने कहा आप खुदा के लिए जीना सीखें, ये आपकी जिंदगी है। आपके बच्चे सारा दिन मौजें करते हैं, आपकी बेगमात गाड़ियों में घूमती हैं, आप तो इस वक्त मुझे सारे ऐसे लग रहे हैं कि जैसे मजलूम लोग हैं। यकीन करें इस वक्त मर्द मजलूम बने बैठे, ये जो घन चक्कर चला है, और ये आखिरी कुछ 10-15 साल में कुछ ज्यादा ही हो गया, सब कुछ पहले भी था। मैं नहीं कहती कि अभी एकदम हुआ है, लेकिन अब एकदम ऐसे लगता है जैसे बूस्टअप हो गया। फेसबुक कह लें, फलां बुक कह लें, मीडिया कह लें, फिल्में कह लें, पहले बहुत भी हम अपने दौर में सुनते थे, लोग कहते थे लोग फिल्में देख के खराब होते हैं, फिल्मों में हीरोइनें फैशन करती हैं, कपड़े वो देखती हैं, औरतें पहनती हैं। आज आपको फिल्म देखने की जरूरत है, आपके हाथ में आपको पूरी दुनिया के मॉडल्स और आपको पूरी दुनिया की चीजें नजर आएंगी। जी आप, जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, एक से दूसरी खराबी है। देखिए आपके जिस्म में कोई एक बीमारी आएगी ना, तो आपकी कई छुपी हुई बीमारियां छुट हो जाएंगी। मतलब शुगर जब लोगों को होती है ना, तो आप देखें जिस्म में और कई बीमारियां चल पड़ती हैं। प्रेगनेंसी में लोग कहते हैं वो भी तकलीफें निकल आती हैं जो आपकी कभी माँ को थी, उसके बाद खत्म होती हैं। इसी तरह जब एक खराबी आएगी ना, तो दूसरी जरूर आएगी। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? जी
तो ये कपड़ों पे तो लोग लगाते हैं आजकल, तो ये भी ट्रेंड हो गया अपनी शक्लें भी बदलवा लो, इस पे इतना इतना पैसा बनवाते हैं लोग के। लोग
ये अभी मुझे कल परसों की सुना रहा था, वो तो खैर यहाँ की बात थी कि कहीं वो गई ग्रीनलैंड में या कहाँ, तो वहां से एक ग्रुप पूरे का पूरा गुजरा, तो वो कह रही कि उन्होंने क्या मेकअप कराया था, अपनी शक्लें बदलाई हुई थी, कोई चांद बना हुआ ना, तो पूरा चांद है, कपड़े भी चांद के, और चेहरे को देखो तो एकदम चांद ही लगता है। और वो कोई ग्रुप था, और कह रही कि कम से कम इन्होंने 10,000 करोड़ अपने ऊपर लगा के वो मॉडल्स बने हुए थे, और उसके बाद वो सारे कहीं गए। पूरी कहानी मुझे भी ये इसी वीक में किसी ने सुनाई है कि देखें लोग अपने आप को नुमाया करने के लिए क्या कुछ करते हैं। फिर क्या हुआ कि किसी ने चांद बनाया हुआ है, किसी ने सर पे कुछ तारा बनाया हुआ है, तो कहा कि सारे किधर जा रहे हैं, तो एक बिल्डिंग है ग्रीनलैंड में काली सी, कहती इतनी बेकार सी बिल्डिंग है, सारे उसमें जा रहे थे। तो मैंने पूछा कि ये कौन है, तो कहती ये अब वहां जाकर सारी रात काला जादू सीखेंगे, तो ये अपने शक्लें जिन्नों भूतों वाली बनाई हुई है, और रात को जाके ये अंदर काले जादू करेंगे, और लाखों रुपया कह रही सिर्फ उन्होंने अपने ऊपर लगाया हुआ है, और इसको लोग प्रमोट कर रहे हैं इस वक्त। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।